का था, रूह वही रूप नया।
रहस्यमयी कहानियों के मशहूर लेखक इब्ने सफी की फरीदी सीरीज के अंतर्गत मैं नई कहानी लेकर आ रही हूं, जिसका नाम है दिलेर मुजरिम। मुझे जाना ही पड़ेगा मामी। डॉक्टर शौकत ने कमरे में दाखिल होते हुए ओवरकोट की दूसरी आस्तीन में हाथ डालते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, और इसके सिवा मैं क्या ही कह सकती हूँ, बूढ़ी सविता देवी बोली। लेकिन सिर में अच्छी तरह मफलर लपेट लो बेटा, सर्दी बहुत है। मामी आप तो मुझे बच्चा बनाए दे रही हैं, मफलर सिर में लपेट लूं। डॉक्टर शौकत बचकाने अंदाज में बोला, अरे अच्छा बड़े मियाँ, जो तुम्हारे जी में चाहे वो करो, मगर मैं कहती हूँ ये कैसा काम हो गया है, न दिन में चैन न रात में चैन, आज ऑपरेशन कल ऑपरेशन है। सविता देवी मुंह बनाकर बोली, अरे मैं अपनी अच्छी मामी को कैसे समझाऊं कि डॉक्टर खुद आराम करने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों को आराम पहुंचाने के लिए होता है। अरे मैंने तो आज खास तौर पर तुम्हारे लिए मैक्रोनी तैयार करवाई थी, क्या रात का खाना भी शहर में ही खाओगे? सविता देवी बोली, क्या करूं मजबूरी है, इस वक्त 7 बज रहे हैं, 9 बजे रात को ऑपरेशन होगा, केस जरा नाजुक है, अभी जाकर तैयारी भी करनी होगी। अच्छा खुदा हाफिज। डॉक्टर शौकत अपनी छोटी सी खूबसूरत कार में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गया। एक सिविल अस्पताल में असिस्टेंट सर्जन की हैसियत से काम कर रहा था। दिमाग के ऑपरेशन का माहिर होने की वजह से उसकी शोहरत दूर दूर तक थी। हालांकि अभी उसकी उम्र कुछ नहीं थी, वो 24-25 बरस का एक खूबसूरत नौजवान था। अपनी आदतों और व्यवहार के चलते सोसाइटी में इज्जत की नजरों से देखा जाता था। कुर्बानी का जज्बा उसकी फितरत में था। आज का ऑपरेशन कल पर भी टाला जा सकता था, लेकिन उसके जमीर ने उसे इजाजत नहीं दी। सविता देवी अक्सर उसकी दौड़ भाग पर झल्ला भी जाया करती थी। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। वो हिंदू धर्म को मानने वाली एक बुलंद किरदार औरत थी। उन्होंने अपनी दम तोड़ती हुई सहेली जाफरी खानम से जो वादा किया था उसे आज तक निभाए जा रही थी। सविता देवी ने अपनी सहेली की वसीयत के अनुसार उसके बेटे को डॉक्टरी की उच्च शिक्षा दिलाकर इस काबिल बना दिया था कि वो आज सारे देश में अच्छी खासी शोहरत रखता था। हालांकि शौकत की माँ उसकी पढ़ाई के लिए काफी धन छोड़कर ही मरी थी, लेकिन किसी दूसरे के बच्चे को पालना आसान काम नहीं, और फिर बच्चा भी ऐसा जिसका संबंध दूसरे धर्म से हो। अगर वे चाहती तो उसे अपने धर्म पर चला सकती थी, लेकिन उनकी नेक नियति ने यह गवारा न किया। स्कूली शिक्षा के साथ साथ उन्होंने धार्मिक शिक्षा का भी ठीक ठाक इंतजाम किया था। यही वजह थी कि वो नौजवान होने पर भी शौकत अली ही रहा। सविता देवी के बिरादरी के लोगों ने एक मुसलमान के साथ रहने की वजह से उनका बॉयकॉट कर दिया था, मगर वे अपने मजहब की पूरी तरह पाबंद थीं और शौकत को उसके धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए मजबूर करती रहती थीं। वे डॉक्टर शौकत और एक नौकरानी के साथ निशात नगर के कस्बे में रह रही थीं, जो शहर से 5 मील की दूरी पर था। यहां उनकी अपनी कोठी थी। वे जवानी में ही विधवा हो गई थीं। उनके पति अच्छी खासी जायदाद के मालिक थे, जो किसी करीबी रिश्तेदार के न होने के कारण पूरी की पूरी उन्हीं के हिस्से में आई थी। डॉक्टर शौकत के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरानी से कहा, मेरे कमरे की बिजली मत जलाना, आज मैं शौकत के ही कमरे में सोऊंगी। वो आज बेचारा रात भर थकता रहेगा, मैं नहीं चाहती कि वो जब सुबह आए तो अपने बिस्तर को अरे बर्फ की तरह ठंडा पाए। जाओ जाकर उसका बिछौना तो लगा दो। नौजवान नौकरानी उन्हें हैरत से देख रही थी। आज पहली बार उसने उन्हें इस किस्म की बात करते सुना था। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि फिर उसे एक ममता भरे दिल की भावना समझकर खामोश हो रही। अरे क्या सोच रही हो, सविता देवी बोली।
तो क्या
आज रात को हम अकेले ही रहेंगे, नौकरानी अपनी धीमी आवाज करके बोली। वो आदमी आज फिर आया था।
कौन आदमी?
मैं नहीं जानती कि कौन है, लेकिन मैंने कल रात को भी उसको बाग में छुप छुप कर चलते देखा था। कल तो मैं समझी कि शायद वो रास्ता भूला हुआ कोई राहगीर है, मगर आज 6 बजे के करीब वो हमें फिर दिखाई दिया था।
अच्छा, वो शायद हमारी मुर्गियों की ताक में होगा। मैं सुबह ही थाने में दीवान से कहूंगी, चिंता ना करो, सविता देवी सोच कर बोली। सविता देवी ने यह कहकर उसको इत्मीनान दिला दिया था, लेकिन खुद उलझन में पड़ गई। आखिर ये संदिग्ध आदमी उनकी कोठी के गिर्द क्यों मंडराता रहता है? उन्हें धार्मिक ठेकेदारों की धमकियां अच्छी तरह याद थीं, लेकिन इतने समय के बाद उनकी तरफ से भी किसी खतरनाक कदम की आशंका नहीं रही थी। इस प्रकार की जाने कितनी गुत्थियां उनके जहन में रेंगती थी। आखिरकार थक हार कर दिल के सुकून के लिए उन्हें अपने पहले ही विचार की तरफ लौटना पड़ा। यानी वो शख्स कोई मामूली चोर था जिसे उनकी मुर्गियां पसंद आ गई होंगी। जैसे ही थाने के घंटे ने 10 बजाए, वे सोने के लिए डॉक्टर शौकत के कमरे में चली गईं। उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया। नौकरानी उनकी आदतें बखूबी जानती थी, इसलिए उसने शायद ज्यादा इसरार भी नहीं किया। थोड़ी देर के बाद वो भी सोने के लिए कमरे में चली गई। वो लेटने ही वाली थी कि उसने बाहर के फाटक को धमाके के साथ बंद होते सुना। उसे लगा कि डॉक्टर शौकत शायद जल्दी वापस आ गए हैं। वो बरामदे में निकल आई। बाग में सविता देवी की गुस्साई हुई आवाज सुनाई दी। वे किसी आदमी से ऊंची आवाज और तेज लहजे में बात कर रही थी। वो बड़ी हैरत से सुनने लगी। वो अभी बाहर जाने का इरादा कर ही रही थी कि सविता देवी बड़बड़ाती हुई आती दिखाई दी।
तुम, अरे लड़की, तुम क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी है? इस सर्दी में बगैर कंबल ओढ़े बाहर निकल आई? न जाने कैसी हैं ये आजकल की लड़कियां,
वे तमतमा कर बोली। कौन था? नौकरानी ने उनकी बात अनसुनी करते हुए कहा। वही आदमी तो नहीं था? नौकरानी खौफजदा हो गई।
अरे नहीं, वो नहीं था। अरे सर्दी बहुत है, सुबह बताऊंगी। अच्छा जाओ, अब सो जाओ।
नौकरानी हैरान होकर चली गई। सविता देवी थोड़ी देर तक उस आदमी के बारे में सोचती रही। वो उन्हें संदिग्ध लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वे खर्रांटे भरने लगी।
दूसरे दिन सुबह 8 बजे जब डॉक्टर शौकत वापस आया तो उसने नौकरानी को परेशान किया। पूछने पर मालूम हुआ कि सविता देवी अपनी आदत के खिलाफ अभी तक सो रही हैं। हालांकि उनकी रोजाना की आदत थी कि सुबह तकरीबन 5 ही बजे उठकर पूजा पाठ के इंतजाम में जुट जाया करती थी।
शौकत को भी इस बात से चिंता हो गई,
लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद रात में ज्यादा देर तक जागी होंगी। उसने नौकरानी को इत्मीनान दिलाकर नाश्ता लाने को कहा। 9 बज गए थे, लेकिन सविता देवी ना उठी। अब शौकत की परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन बेकार, अंदर से कोई जवाब ही ना मिला। हार कर उसने एक बढ़ई को बुलवाया। दरवाजा टूटते ही उसकी चीख निकल गई। सविता देवी सिर से पांव तक कंबल ओढ़े चित लेटी हुई थी और उनके सीने में खंजर इस तरह घोपा गया था कि सिर्फ उसका हत्था नजर आ रहा था। बिस्तर खून से तर था। डॉक्टर शौकत एक मजबूत दिल का आदमी होते हुए भी थोड़ी देर के लिए बेहोश सा हो गया। होश आते ही वो बच्चों की तरह से सकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सारे घर में मातम छा गया। कस्बे के थाने को सूचना मिल गई थी और उस वक्त एक सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल मृत महिला के कमरे के सामने बैठे खुसुर फुसुर कर रहे थे। नौकरानी के बयान पर उन्होंने अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। उनके ख्याल में वही संदिग्ध आदमी कातिल था जो रात को बाग में आया था और सविता देवी रात में उसी से झगड़ा कर रही थी। डॉक्टर शौकत उनकी बातों से संतुष्ट नहीं था। जैसे जैसे वे अपनी तजर्बेकारी का इजहार कर रहे थे, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वैसे भी वो अपने कस्बे की पुलिस को एकदम नाकारा समझता था, इसीलिए उसने खुफिया डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर फरीदी को एक निजी खत लिखकर बुलवा भेजा था। फरीदी उन चंद इंस्पेक्टरों में से था जो बहुत ही अहम कामों के लिए बुलाया जाता था।
लेकिन निजी संबंधों के चलते डॉक्टर शौकत को पूरा यकीन था कि ये केस सरकारी तौर पर उसे ना भी सौंपा गया तो भी वो उसे अपने हाथ में ले लेगा। लगभग 2 घंटे के बाद इंस्पेक्टर फरीदी अपने असिस्टेंट सार्जेंट हमीद के साथ वहां आ पहुंचा। इंस्पेक्टर फरीदी 30-32 साल का एक तेज दिमाग और बहादुर नौजवान था। उसके चौड़े माथे के नीचे 2 बड़ी-बड़ी आंखें उसकी काबिलियत को नुमायां करती थी। उसके लिबास के रखरखाव और ताजा शेव किए चेहरे से मालूम हो रहा था कि वो एक उसूल वाला आदमी है। सार्जेंट हमीद की चाल ढाल में थोड़ा सा जनानापन था। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो जबरदस्ती अपने हुस्न की नुमाइश करने का आदी था। उसने कोई बहुत ही तेज खुशबू वाला सेंट लगा रखा था। उसकी उम्र 24 साल से ज्यादा न थी, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी वो बहुत चतुर और बुद्धिमान था। इसी बुद्धिमानी के बिना पर उसके साथ इंस्पेक्टर फरीदी के ताल्लुकात दोस्ताना थे। दोनों की आपस की गुफ्तगू से अफसरी या मातहती का पता लगाना मुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। थाने के सब इंस्पेक्टर और दीवान उनके अचानक आ जाने से घबरा गए, क्योंकि उन्हें उनके आने की खबर नहीं थी। उन्हें उनका आना बुरा लगा। अब डॉक्टर शौकत, इस नुकसान की भरपाई नामुमकिन है, लेकिन रस्मी तौर पर मैं अपने गम का इजहार जरूर करूंगा, फरीदी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। इंस्पेक्टर, आज मेरी मां मर गई। शौकत की आंखों से आंसू छलक आए। सब्र करो, तुम्हें एक मजबूत दिल का आदमी होना चाहिए, सब्र करो, फरीदी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कहिए दरोगा जी, कुछ सुराग मिला? उसने सब इंस्पेक्टर की तरफ मुड़कर पूछा।
अरे साहब, हम बेचारे भला क्या सुराग जाने, सब इंस्पेक्टर ने बड़े स्टाइल में जवाब दिया।
फरीदी ने जवाब की कड़वाहट महसूस जरूर की, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराकर खामोश हो गया। शौकत साहब, ये तो आप जानते ही हैं कि मैं आजकल छुट्टी पर हूं, और फिर दूसरी बात यह है कि आमतौर पर कत्ल के केस उस वक्त हमारे पास आते हैं जब सिविल पुलिस छानबीन में नाकाम रहती है, फरीदी बोला। थाने के सब इंस्पेक्टर की आंखें खुशी से चमक उठी। इंस्पेक्टर फरीदी ने सब इंस्पेक्टर की खुशी को महसूस किया और अपने जाने पहचाने अंदाज में बोला, लेकिन मैं निजी तौर पर इस केस को अपने हाथ में लूंगा। थाने के सब इंस्पेक्टर की आंखों की चमक एकदम से गायब हो गई और उसका मुंह लटक गया। फरीदी ने पूरा किस्सा सुनने के बाद नौकरानी का बयान लेना शुरू किया। नौकरानी ने शुरू से आखिर तक रात की सारी कहानी दोबारा सुना दी। तुम बता सकती हो कि रात में तुमने इस हादसे के बाद भी क्या कोई आवाज सुनी थी?
जी नहीं, मैंने सिर्फ देवी जी के बड़बड़ाने की ही आवाज सुनी थी। वे अक्सर सोते वक्त बड़बड़ाया करती थी।
क्या तुम बता सकती हो कि वो क्या बड़बड़ा रही थी?
अब यही कुछ बेकार की बातें, ठहरिए याद करके बताती हूँ।
कुछ देर सोचने के बाद वो बोली,
हाँ ठीक याद आया, वे राजरूप नगर ऐसे बड़बड़ा रही थी। मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उनकी आदत जानती थी।
राजरूप नगर, फरीदी ने धीरे से दोहराया और कुछ सोचने लगा। हमीद, तुमने इससे पहले कभी ये नाम सुना है? हमीद ने नहीं में सिर हिला दिया। डॉक्टर शौकत, तुमने?
मैंने तो आज तक नहीं सुना।
क्या सविता देवी ने भी कभी ये नाम नहीं लिया?
मेरी याददाश्त पे तो नहीं लिया,
डॉक्टर शौकत ने जहन पर जोर देते हुए जवाब दिया। अच्छा, मैं जरा लाश देखना चाहूंगा, फरीदी ने कहा। सब लोग उस कमरे में आए जहां लाश पड़ी हुई थी। चारपाई के सिरहाने वाली खिड़की खुली हुई थी, उसमें सलाखें नहीं थी। इंस्पेक्टर फरीदी देर तक लाश का मुआयना करता रहा, फिर उसने वो छुरा सब इंस्पेक्टर की इजाजत से लाश के सीने से खींच लिया और उसके हत्थे पर उंगलियों के निशान ढूंढने लगा। फिर खिड़की की तरफ गया और झुककर नीचे देखने लगा। खिड़की से 3 फुट नीचे लगभग 1 फुट चौड़ी कॉर्निस थी, जिससे बांस की एक सीढ़ी लटकी हुई थी। खिड़की पर पड़ी हुई धूल कई जगह से साफ थी और एक जगह पांचों उंगलियों के निशान साफ देखे जा सकते थे। खैर, ये तो साफ जाहिर है कि कातिल इस खिड़की से आया था, फरीदी ने कहा।
ये तो इतना साफ है कि घर की नौकरानी भी यही कह रही थी,
थाने के इंस्पेक्टर ने मजाक में कहा। फरीदी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और खामोशी से खंजर का जायजा लेने लगा। कातिल ने दस्ताने पहन रखे थे और वो एक बहुत ही बेहतरीन खंजरबाज मालूम होता है, एक ताकतवर इंसान है। दरोगा जी, इस खंजर के बारे में आपकी क्या राय है? इंस्पेक्टर फरीदी बोला।
खंजर? जी हाँ, ये भी बहुत मजबूत मालूम होता है।
इंस्पेक्टर मुस्कुरा कर बोला। जी नहीं, मैं इसकी बनावट के बारे में पूछ रहा हूँ।
इसकी बनावट के बारे में तो सिर्फ लोहार ही बता सकते हैं।
जी नहीं, मैं भी बता सकता हूँ। इस किस्म के खंजर नेपाल के अलावा और कहीं नहीं बनते। नेपाल? डॉक्टर शौकत को जैसे झटका लगा और वो एक कदम पीछे हट गया। क्यों, क्या हुआ? फरीदी उसे घूरता हुआ बोला। नहीं, कुछ नहीं, शौकत ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। खैर, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह के खंजर सिवा नेपाल के और कहीं नहीं बनाए जाते। और डॉक्टर, मैं तुमसे कहूंगा कि अभी वो इतना ही कह पाया था कि एक कांस्टेबल ने आकर खबर दी कि उस शख्स का पता लगा लिया गया है जिससे कल रात सविता देवी का झगड़ा हुआ था। सब लोग तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था। आने वाले कांस्टेबल ने यह बताया कि रात सविता देवी उसी से झगड़ रही थी। वो रात में इस तरफ से गुजर रहा था कि सविता देवी ने उसे पुकारा। उसे जल्दी थी क्योंकि वो गश्त पर जा रहा था, लेकिन वो फिर भी चला आया। सविता देवी ने उसे बताया कि कोई आदमी उनकी मुर्गियों की ताक में है और हमसे इधर का ख्याल रखने को कहा। उसने जवाब दिया कि पुलिस मुर्गियां ताकने के लिए नहीं है, और फिर वो दूसरी चौकी का कांस्टेबल है। बस उसी बात पर बात बढ़ गई और झगड़ा होने लगा। थाने का दरोगा उसे अलग ले जाकर पूछताछ करने लगा और फरीदी ने बुलंद आवाज में कहना शुरू किया। हाँ तो डॉक्टर, मैं तुमसे ये कह रहा था कि ये खंजर दरअसल तुम्हारे सीने में होना चाहिए था। सविता देवी धोखे में कत्ल हो गई हैं, और जब कातिल को अपनी गलती का पता चलेगा तो वो फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब फिर उसी कमरे में चलकर मैं जरा इसका खुलासा करूंगा। इस बात पर सबके सब बौखला गए। शौकत घबराहट में जल्दी जल्दी पलकें झपका रहा था। दरोगा जी की आंखें हैरत से फटी हुई थी और सार्जेंट हमीद उन्हें मजाकिया तौर पर घूर रहा था। सब लोग फिर उस लाश वाले कमरे में आए। इंस्पेक्टर फरीदी खिड़की की कॉर्निस पर उतर गया और लाइन से सारे कमरों की खिड़कियों को चेक करने के बाद लौट आया। अब मामला साफ हो गया था कि सविता देवी डॉक्टर ही के धोखे में कत्ल हुई हैं। अगर कातिल सविता देवी को कत्ल करना चाहता तो उसे ये कैसे मालूम हो सकता था कि सविता देवी शौकत के कमरे में सोई हुई थी? इंस्पेक्टर फरीदी ने कहा। अगर वो तलाश करता हुआ इस कमरे तक पहुंचा तो दूसरी खिड़कियों पर भी इस किस्म के निशान होने चाहिए थे जैसे कि इस खिड़की पर मिले हैं। और फिर सविता देवी के कत्ल की सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी, उनकी जायदाद। लेकिन अगर उसका फायदा उनके किसी रिश्तेदार को पहुंचता तो वो उन्हें अब से 10 बरस पहले ही कत्ल कर देता या करवा देता, जब उन्होंने अपनी जायदाद धर्मशाला के नाम लिखने का सिर्फ इरादा ही जाहिर किया था। अब जबकि 10 साल गुजर चुके हैं और जायदाद के बारे में कानूनी वसीयत की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उनके कत्ल की कोई ठीक ठाक वजह समझ में नहीं आती। अगर कातिल चोरी की नीयत से अचानक कमरे में दाखिल हुआ जिसमें वो सो रही थी, तो क्या वजह थी कि उसने कोई चोरी नहीं की? हाँ, हो सकता है कि इस कमरे में दाखिल होते हुए सविता देवी जाग उठी हो और पकड़े जाने के खौफ से उन्हें कत्ल करके कुछ चुराए बगैर ही वो भाग गया हो। दरोगा जी ने अपना दिमागी तीर मारा। माय डियर, मैं साबित कर सकता हूँ कि कातिल हमले के बाद काफी देर तक इस कमरे में ठहरा रहा है, फरीदी जोश से बोला। सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर कटीली मुस्कुराहट फैल गई और सार्जेंट हमीद उसे दांत पीस कर घूरने लगा। इंस्पेक्टर फरीदी ने कहना शुरू किया। जिस वक्त शौकत ने लाश को देखा, वो सिर से पैर तक कंबल से ढकी हुई थी। जाहिर है कि इससे पहले कोई कमरे में दाखिल भी नहीं हो सकता था, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। लिहाजा लाश पर पहले शौकत ही की नजर पड़ी, इसलिए किसी और के मुंह को ढांकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा लाश के करीब आइए दरोगा जी। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस लाश का निचला होंठ दांतों में दबकर रह गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कातिल ने एक हाथ सविता देवी के मुंह पर रखा था और दूसरे हाथ से वार किया था, फिर फौरन ही मुंह दबाए हुए इनके पैरों पर बैठ गया ताकि ये हिल ना सकें। और वो इस हालत में उस वक्त तक बैठा रहा जब तक कि इन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। होंठ का दांतों में दबा होना जाहिर कर रहा है कि ये तकलीफ के कारण सिर्फ इतना ही कर सकी कि इन्होंने दांतों में होंठ लिया, लेकिन कातिल के हाथ के दबाव की वजह से होंठ फिर अपनी असली हालत पर आ नहीं सका और इसी हालत में लाश ठंडी हो गई। कातिल को अपने मकसद की कामयाबी पर इतना यकीन था कि उसने कंबल उलटकर अपने शिकार का चेहरा तक देखने की जहमत गवारा ना की। हो सकता है कि उसने बाद में मुंह खोलकर देखा भी हो। इंस्पेक्टर फरीदी रुका, लेकिन फिर कुछ सोच कर बोला, मगर नहीं, अगर ऐसा करता तो फिर दोबारा ढंक देने की कोई ऐसी खास वजह समझ नहीं आती। शायद ये खुदकुशी का केस हो। सब इंस्पेक्टर ने अपनी काबिलियत दिखाई। अरे जनाबे आला, इतनी उम्र हो गई लेकिन कंबल ओढ़कर आराम से खंजर घोंप लेने वाला एक भी ना मिला कि मैं उसकी कद्र कर सकता है। सार्जेंट हमीद आखिरकार बोला। सब इंस्पेक्टर ने झेप कर सिर झुका लिया। इंस्पेक्टर फरीदी इन बातों को सुनी अनसुनी करके डॉक्टर शौकत से बोला, डॉक्टर तुम्हारी जान खतरे में है, ये प्लान तुम्हारे ही कत्ल के लिए बनाया गया था। सोच कर बताओ, क्या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारी जान तक लेने में कसर नहीं छोड़ेगा? मेरी याददाश्त में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। आज तक मेरे संबंध किसी से खराब नहीं रहे। लेकिन ठहरिए, आपको याद होगा कि मैं नेपाली खंजर की बात पर अचानक चौंक पड़ा था। तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। एक रात मैं एक बहुत ही खतरनाक किस्म का ऑपरेशन करने जा रहा था कि एक अच्छी हैसियत का नेपाली मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मैं उसी वक्त एक मरीज को देख लूं जिसकी हालत नाजुक है। मैंने मजबूरी जाहिर की तो वो रोने और गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि पहले ही एक खतरनाक केस मेरे पास था। खतरा था कि उसी रात उसका ऑपरेशन न किया गया तो मरीज की मौत हो जाएगी। आखिर जब वो नेपाली उदास हो गया तो मुझे भला बुरा कहता हुआ वहां से चला गया। दूसरी सुबह जब मैं अस्पताल जा रहा था तो चर्च रोड के चौराहे पर पेट्रोल लेने के लिए मैं रुका। वहां मुझे वही नेपाली नजर आया। मुझे देखकर उसने नफरत से बुरा सा मुंह बना लिया और अपनी जबान में कुछ बड़बड़ाता हुआ मेरी तरफ आया और मुक्का तान कर कहने लगा, शाला हमारा आदमी मर गया, अब हम तुम्हारी खबर लेगा। मैंने हंसकर मोटर स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। अच्छा, उसकी शक्ल सूरत के बारे में कुछ बता सकते हो? ये जरा मुश्किल है क्योंकि मुझे तो सारे नेपाली एक ही जैसी शक्ल सूरत के लगते हैं, डॉक्टर शौकत ने जवाब दिया। खैर, अपनी हिफाजत का खास ख्याल रखो। अच्छा दरोगा जी, मेरा काम खत्म। डॉक्टर शौकत, मैंने तुमसे वादा किया था कि इस केस को मैं अपने हाथ में लूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि दरोगा जी इस काम को बखूबी अंजाम देंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ डॉक्टर, जरा कार तक तो चलो, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें कुछ हिदायतें देना चाहता हूँ। अच्छा दरोगा जी, आदाब अर्ज। कार के करीब पहुंचकर फरीदी ने जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकाली और डॉक्टर शौकत को थमा दी। ये लो, हिफाजत के लिए ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ और कल तक इसका लाइसेंस भी तुम तक पहुंच जाएगा। जी नहीं, शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है, डॉक्टर शौकत ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। अरे बेवकूफ आदमी, बिगड़ गए क्या? क्या तुम सचमुच ये समझते हो कि मैं इस केस की खोजबीन नहीं करूंगा? हाँ, उन गधों के सामने मैंने ये केस अपने हाथ में लेने से इनकार किया। ये कमबख्त सिर्फ बड़े अफसरों तक शिकायत पहुंचाने के काबिल होते हैं। डॉक्टर शौकत के चेहरे पर रौनक वापस आ गई और उसने पिस्तौल लेकर जेब में डाल ली। देखो, जब भी कोई जरूरत हो मुझे बुलवा लेना। हो सकता है कि मैं 10 बजे रात तक फिर आऊं, लेकिन तुम होशियार रहना। अच्छा, खुदा हाफिज। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आप सुन रहे थे कहानी दिलेर मुजरिम का पहला भाग। रात 10 बजे आने का वादा करके फरीदी कहां गया, सुनिए भाग 2 में।